समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका है आपसे सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी नजर होगी हमारी और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक में आज आपके साथ मैं हूं दिव्या तोमर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनीता आनंद।
Hello and good afternoon. You're tuned to Parikrama on 100.1 FM. And for all of our listeners, we have a selection of news. Our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business, tributes, and much more. All this over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Divya.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। कहा, भारत सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए हर कदम उठाएगा।
Prime Minister addresses International Conference on Green Hydrogen virtually, emphasizes that climate change and energy transitions are global concerns.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नर्सों का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार से सम्मानित किया।
Second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation to begin this afternoon in New Delhi.
और चीन में उलनबियूर में पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से।
And time now for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level today. We talk about green hydrogen. Divya, green hydrogen is emerging as a promising addition to the world's energy landscape and it can help in decarbonizing industries that are difficult to electrify. In this regard, Prime Minister Narendra Modi's observation at the second international conference on green hydrogen is quite important, as he clearly outlined India's roadmap in this sector. He said India was the first among G20 nations to fulfill its Paris commitments on green energy. These commitments were fulfilled 9 years ahead of the target of 2030. India installed non-fossil fuel capacity and it increased nearly 300% in the last 10 years. He said India's solar energy capacity increased over 3,000% in the same period. But India is not resting on these achievements. The country remains focused on strengthening existing solutions and also looking at new and innovative areas. This is where green hydrogen comes into the picture. Green hydrogen is emerging as a promising addition to the world's energy landscape.
बिल्कुल अनीता, आपने सही कहा। और भारत ने 2070 तक शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य घोषित किया है। जैसे जैसे भारत का विकास प्रगति पर है, ऐसे में इसकी ऊर्जा और संसाधनों की मांग बढ़ना भी तय है। पिछले 20 वर्षों में ऊर्जा का उपयोग दोगुना हो गया है और वर्ष 2030 तक इसमें कम से कम 25% और बढ़ने की संभावना है। भारत वर्तमान में अपनी प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकताओं का 40% से अधिक आयात करता है, जिसका मूल्य हर साल 90 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। परिवहन और औद्योगिक उत्पादन जैसे प्रमुख क्षेत्र आयातित जीवाश्म ईंधन पर काफी निर्भर हैं और इसके लिए उन प्रौद्योगिकियों की ओर बदलाव की आवश्यकता है जो ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम हो और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को आने वाले समय में कम करे। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन ऐसे कम कार्बन और आत्मनिर्भर आर्थिक मार्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। अनीता
एंड दिव्या, ऑल्सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड हाउ ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वेयर वाटर इज स्प्लिट इन टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर, विंड और हाइड्रोपावर। This process results in a clean and emission-free fuel that has immense potential to replace fossil fuels and reduce carbon emissions. And Divya, another method of producing green hydrogen is from biomass, which involves the gasification of biomass to produce hydrogen. Both these production methods are clean and also sustainable, making green hydrogen an attractive option for the transition to a low carbon future.
बिल्कुल अनिता, परिवहन, शिपिंग और स्टील सहित कई क्षेत्रों को डीकार्बनाइज करने की क्षमता के कारण ग्रीन हाइड्रोजन की आवश्यकता अब तेजी से बढ़ रही है और हरित हाइड्रोजन परिवहन के क्षेत्र में पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकता है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देता है. ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया, मेथनॉल और स्टील के उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है जो वर्तमान में जीवाश्म ईंधन पर बहुत ज्यादा निर्भर है. तो कहीं ना कहीं हमारा आयात भी घटेगा जो हम विदेशों से अभी कर रहे हैं. और ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए बैकअप ऊर्जा स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है जो ऊर्जा का एक निरंतर और विश्वसनीय स्रोत प्रदान करता है. ग्रीन हाइड्रोजन के और भी कई उपयोग हैं, जैसे इसका उपयोग वाहन चलाने और बिजली प्रदान करने के लिए किया जा सकता है. इसका उपयोग हीटिंग सिस्टम, रसायनों और उर्वरकों के उत्पादन में भी किया जा सकता है. हाइड्रोजन फ्यूल सेल में ऊर्जा घनत्व बहुत ज्यादा होता है, उच्च होता है और पारंपरिक दहन इंजनों की तुलना में अधिक कुशल होते हैं जिससे वे वाहनों को बिजली देने के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकते हैं. इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग माइक्रो ग्रिड में किया जा सकता है जो दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली प्रदान करता है और ऊर्जा के क्षेत्र में लोगों को सक्षम बनाता है.
And Divya, the importance of green hydrogen in achieving energy independence for India cannot be overstated. The production of green hydrogen using renewable energy sources like solar, wind and hydropower can provide energy security, like you mentioned, reducing dependence on fossil fuels and ensuring a stable and reliable source of energy. Green hydrogen can also be produced locally, reducing the need for costly and environmentally damaging imports. Furthermore, green hydrogen produced using waste biomass provides an additional revenue stream for farmers and also local communities. Hence, India has launched a national green hydrogen mission with an outlay of 19,744 crore rupees, with a target of 5 million metric tons production capacity of green hydrogen per annum.
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना चाहती है. प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नवाचार, बुनियादी ढांचे, उद्योग और निवेश को बढ़ावा दे रहा है. उन्होंने कहा कि देश अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास में निवेश कर रहा है और उद्योग तथा शिक्षा के क्षेत्र के बीच साझेदारी बन रही है. जो स्टार्टअप और उद्यमी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है. और अनीता, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
जी, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत टुडे इनॉग्रेटेड अ स्पेशल रेलवे कोच डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी एट राजघाट न्यू दिल्ली. Father of the nation, Mahatma Gandhi's iconic rail journeys played a defining role in shaping his philosophy and also vision for India. Travelling in third-class compartments across the Indian subcontinent, Gandhiji connected with people from all walks of life, witnessing firsthand their struggles as well as their hardships. These rail journeys played a crucial role in his understanding of social fabric and diverse culture of the country, which inspired him to fight for the independence of the country. We have a report.
In commemoration of Mahatma Gandhi's inspirational rail journeys and create awareness in masses, a unique coach has been displayed at Gandhi Darshan near Rajghat in New Delhi. Adorned with sculptures depicting scenes from his train journeys and his interactions with fellow passengers, the coach provides visitors with an immersive experience, bringing to life the humble yet profound way Gandhi connected with the people of India. Union Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat today inaugurated this special coach, highlighting the enduring relevance of Gandhi's principles. He said, Gandhiji has been an inspiration not just for India but for the world, and his teachings of Ahimsa are still relevant today. Sumit Saha for Parikrama.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत में जल संरक्षण पहल जल संचय जन भागीदारी का शुभारंभ किया था. इस पहल का लक्ष्य पूरे गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत कच्छ जिले में बारिश के जल को बचाने के लिए अनेक विकल्प शुरू किए गए हैं। हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
सीमावर्ती कच्छ जिले में आमतौर से पानी की कमी रहती है, पर पिछले कुछ वर्षों से जिले में बारिश के पानी के संचय के लिए जल संरक्षण की दिशा में व्यापक प्रयास हो रहे हैं। कच्छ जिले में बारिश के जल को बचाने के लिए अनेक वर्षों से कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्था एरिड कम्युनिटीज एंड टेक्नोलॉजी के संस्थापक और भूजल विशेषज्ञ योगेंद्र जाडेजा ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए इस अभियान की सराहना की और बताया कि इससे जल संरक्षण के कार्यों में तेजी आएगी और बड़े पैमाने में वर्षा जल का संचयन करने में मदद मिलेगी।
महत्वपूर्ण बात यह है कि कच्छ में बहुत सारे डिजास्टर भी होते हैं। जिस डिजास्टर में ड्राउट को जैसे हम स्लो डिजास्टर मानते हैं, और सदियों से कच्छ का इतिहास रहा है कि वो ड्राउट वाला इलाका रहा है, तो इसलिए पानी की किल्लत के बारे में कच्छ पहले से जाना जा रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो कच्छ में ड्राउट के कारण और जो अभी हाल ही में जो हो रहा जलवायु परिवर्तन, तो दोनों सिचुएशन में बरसात में या तो कम बरसात होती है या तो बहुत ज्यादा बरसात होती है। अब दोनों सिचुएशन में देखा जाए तो जब हमारी गर्मियों की मौसम आती है या अकाल जैसा कोई परिस्थिति निर्माण होती है तो पानी की किल्लत, पानी की डेफिसिट का महसूस होता है, स्कैर्सिटी महसूस होती है। तो इस दृष्टिकोण से ये जो जल संचय अभियान है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, ताकि हम जो हमारा पास जो बरसात जैसा माध्यम से जो पानी आ रहा है उसको हम अच्छी तरीके से संग्रह कर पाए।
इस बार हाल ही में हुई भारी बारिश और इसके साथ अब जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत ग्राम पंचायतें और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जल संरक्षण के व्यापक प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की उपलब्धता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। परिक्रमा के लिए भूज से अशरफ नथवाणी के साथ अहमदाबाद से मैं अपर्णा खुंड।
And now we go over to the northeast part of the country. PM Swanidhi, the micro credit scheme for urban street vendors, which provides collateral-free loans up to 50,000 rupees, was launched by the centre in 2020 during the COVID-19 outbreak. Under this scheme, Mizoram has a target of 4,025 street vendors, out of which 2,364 have been selected as beneficiaries by the State Nodal Department, Urban Development and Poverty Alleviation Department. Mizoram has wholeheartedly embraced the scheme, with the recent campaign yielding impressive results. More from our correspondent.
2,364 street vendors have been availing the PM Swanidhi scheme in Mizoram. Apart from the state capital Aizawl, other district capitals has also been following up the scheme with lending institutions and CSC setting up loan camps for an awareness drive. DNULM Mission Director Andrew H. Vanlaldika said, awareness is given to the people about digital payment system and has selected two beneficiaries to attend this year's Republic Day ceremony held in the national capital. Recently, a function was organized in Aizawl by the state UDNPA department, where performance recognition for access to financial inclusion and street vendors empowerment praise award was handed out. Aizawl Municipal Corporation is awarded the best performing ULB. Best performing lending institution was backed by Mizoram Rural Bank and State Bank of India. Best Performing Bank Branches Award was also given to 5 Mizoram Rural Bank branches. The scheme's impact has been felt immensely by hawkers, vegetables and fruit sellers, especially in the state capital Aizawl, which has locked down for months during the height of the COVID pandemic. Kunlom Omi, a beneficiary of the scheme, has expressed her gratitude to the center, who works for the upliftment of street vendors and their families.
My name is Kunlom Omi from Mizoram. I took the first installment of rupees 10,000 under PM Swanidhi scheme, and also had taken out the last installment of rupees 50,000. I sell fruit with this money and earn profits. I am thankful to the central government, and I hope that we get more amount of loan. Thank you.
Irene Akashwani, Aizawl.
और अनीता, अब नॉर्थ ईस्ट की परिक्रमा करने के बाद अब हम चलते हैं देश के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में। इन दिनों गणेशोत्सव का पर्व पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और न सिर्फ मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में, पूरे देश में गणेशोत्सव की धूमधाम है। छत्रपति संभाजी नगर जिले के 180 अधिक से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह ने इस गणेशोत्सव में गणेश मूर्तियों के साथ साथ डेकोरेशन की हैंडमेड वस्तुओं की बिक्री से लगभग 6.25 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यवसाय किया है।
वाव।
तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। स्वदेशी वस्तुओं का एक तो हम प्रयोग कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं हमारे देश की महिलाएं।
महिलाओं के आर्थिक रूप से सक्षमीकरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है। छत्रपति संभाजीनगर जिला परिषद की पहल से यहां की कई दीदियों ने लखपति बनने की ओर कदम रखे हैं। जिला परिषद के सीईओ विकास मीणा की संकल्पना से पूरे छत्रपति संभाजीनगर जिले में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की ओर से गणेश मूर्तियों के साथ साथ साज सज्जा के सामान की दुकानें लगाई गई थी। इन दुकानों से लगभग 6.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री हुई है। विकास मीणा ने इस बारे में और अधिक जानकारी दी।
माननीय प्रधानमंत्री सर का ऑलरेडी विजन है कि हर एक गांव की हर एक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए। उसी उपक्रम के अंतर्गत हमारा भी ये प्रयत्न रहा। लगभग 180 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को लास्ट 3 से 4 महीने से प्रशिक्षण देते रहे, मूर्तियों के स्वरूप को चेंज करना, उसका सौंदर्यीकरण करना है। इसी के साथ इस साल हमने शोभा की वस्तुएं जैसे कि माला, बाहर के डेकोरेशन के लिए अलग अलग चीजें जो लगती हैं, स्टॉल्स के पास में दुकान उनकी लगाई गई, एंड इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिला है। 5.86 करोड़ इतना टोटल सेल हुई है 183 स्टॉल्स में। लगभग 2000 के समथिंग महिलाओं के कुटुंब को हमने डायरेक्टली उनकी आजीविका के स्रोत को बढ़ाया है और उनको ओपन मार्केट में कॉम्पीट करने और उससे बेनिफिट मिलने की एक चांस हमने प्रोवाइड किया है, क्योंकि हमें भी पता है कि उनका वस्तु बहुत अच्छी है, उनको मार्केट प्लेस की जरूरत है और रिलेटिवली उनकी कॉस्टिंग मार्केट की रेट से कम है क्योंकि मिडिलमैन इसमें नहीं है। एक अच्छा एक्सपोजर मिलना और दुकान मिलने से उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। उन्होंने अपने काम के माध्यम से दिखाया है, ओपन मार्केट में यदि उनको चांस मिलेगा तो वो इजीली समाज के लिए एक आदर्श बन सकती है और एक नया स्वरूप जो बिजनेस का है वो उन्हें दिखा सकती है।
एक अच्छे गवर्नेंस का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
And now we take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In the history of mankind, there have been rare instances where the introductory words spoken by a person have electrified the world as much as Swami Vivekananda's groundbreaking speech on this day in the year 1893 at the Chicago World's Parliament of Religions.
Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth.
The speech by Swamiji has been oft referred by leaders from across the globe to remind the audience of the values which Swamiji's speech stood for: compassion, brotherhood, tolerance, and acceptance.
When Swami returned to the motherland, the Raja of Ramanathapuram in Tamil Nadu, who had sponsored Swami's trip to Chicago, accorded a grand reception.
He also drew the carriage carrying Swami Vivekananda, saying, "Swami Vivekananda is the King of Kings."
Vinayak Narhari Vinoba Bhave was born on 11th of September 1895 in Maharashtra's Pune district. He is considered as the spiritual successor of Mahatma Gandhi.
In 1940, Vinoba was chosen by Gandhi to be the first individual Satyagrahi against the British rule. Bhave also participated in the Quit India movement.
Post-independence, Bhave started Sarvodaya movement. He also started Bhudan movement at Pochampally in Andhra Pradesh on 18th of April 1951. He walked all across India, asking people with land to donate them, which he distributed to landless poor. He also campaigned against the slaughtering of cows.
Vinoba Bhave was a scholar, a thinker, and a writer who produced numerous books. Though he was deeply influenced by the Gita, he drew inspirations from the Quran and Christian teachings too. He breathed his last on the 15th of November, 1982.
On this day, Subramanya Bharati, one of the greatest poets of modern India, breathed his last. Bharati was born in Ettayapuram in Tamil Nadu on 11th of December 1882.
The songs on the Russian and French revolutions, Bharati wrote on diverse subjects. Bharati met Mahatma Gandhi, who was very much impressed by the multifaceted and fearless personality of Bharati, and told people to take care of him.
But he wasn't taken care of. His health deteriorated and he died on 11th of September 1921. It was recorded that there were only 14 people to attend his funeral.
The nightingale that sang from a solitary tree perished, but the songs linger on forever.
Today is the birth anniversary of another great personality of India, Paramasivan Subbarayan. He was born on 11th of September 1889 in Salem in Tamil Nadu.
He was a freedom fighter and diplomat and was the chief minister of Madras Presidency and a union minister in Jawaharlal Nehru's government.
He was the father of General P.P. Kumaramangalam, who served as India's chief of army staff and politician Mohan Kumaramangalam. He was also the grandfather of former union minister Rangarajan Kumaramangalam.
And in business news today, India's equity benchmark indices Sensex and Nifty ended in a negative territory. Both the indices slipped nearly 0.5% each in a volatile intraday trade as investors awaited crucial U.S. inflation data due today. At close, the Sensex, which is a pack of 30 companies, was down 398 points at 81,523, and NSE Nifty was down 123 points at 24,918. In the Indian bullion market, at 4 p.m., the 24-carat gold was trading at 72,360 rupees for 10 grams, and silver at trading at 84,680 per kilogram.
और अनीता अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल
जी इन हॉकी डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल ऑफ द मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट आफ्टर थ्रैशिंग मलेशिया 8-1 इन द राउंड रॉबिन स्टेज एट हुलुनबुई इन चाइना दिस आफ्टरनून राजकुमार पाल स्कोर्ड अ हैट्रिक व्हाइल अरिजीत सिंह हुंडल नेटेड अ ब्रेस टू हेल्प इंडिया रजिस्टर देयर थर्ड सक्सेसिव प्रिलिमिनरी राउंड विन Rajkumar netted in the 3rd, 25th and 33rd minute and Arajit found the net in 6th and 39th minute. Jagraj Singh and Harmanpreet Singh also got into the scores heat from the penalty corners while Uttam Singh grabbed India's 8th and final goal in the 40th minute. For the last edition's runner-up, Malaysia Akimullah Anwar in the 34th minute managed a solitary strike. India is currently on top of the standings with the 9 points from 3 wins. The 6-team tournament is being played in the round-robin format with top 4 teams qualifying for the semi-finals on the 16th of September. The final is set for 17th of this month.
और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस श्रोताओं आज सबसे पहले याद कर रहे हैं
लाला अमरनाथ भारद्वाज. सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, हियर इज अ ल्यूमिनरी हु वाज बोर्न ऑन दिस डे on 11th of September 1911, was the Indian cricketer. He's considered to be the father figure of Indian cricket. He scored the first ever century for India in the Test cricket in the year 1933. He was independent India's first cricket captain and captained India in their first Test series win against Pakistan in 1952. He played only 3 test matches before World War II. India played no official test matches during the war. During this time, he amassed around 10,000 runs with 30 hundreds in first-class cricket, which included teams from Australia and England.
और अनीता, उन्हें भारत सरकार द्वारा सन 1991 में खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. उनके निधन पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने शोक संदेश में उन्हें भारतीय क्रिकेट का आइकन करार दिया था. और आधुनिक काल के प्रसिद्ध हिंदी और राजस्थानी लेखक कन्हैयालाल सेठिया की भी आज जयंती है. इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य रचना पाथल व पीथल है. श्री सेठिया ने राजस्थान में सामंतवाद के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाई थी और पिछड़े वर्ग को आगे लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक, दार्शनिक तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि एवं लेखक के रूप में कन्हैयालाल सेठिया को अनेक सम्मान, पुरस्कार एवं अलंकरण प्राप्त हुए थे. भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है. कन्हैयालाल जी की अब तक हिंदी में 18, उर्दू में 2 और राजस्थानी में 14 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है.
And today we also remember Binoy Krishna Basu or Binoy Bose, whose birth anniversary is today. He was born in 1908, the Indian revolutionary against the British rule in India, who launched an attack on the Secretariat building, the Writers' Building at the Dalhousie Square in Kolkata, along with Badal Gupta and Dinesh Chandra Gupta. Binoy, then a medical student, was called upon to strike the first blow. In August of 1930, Binoy came to know that Loman, the Inspector General of Police, would be visiting the medical school hospital to see an ailing senior police official undergoing treatment. On 29th of August in 1930, Binoy, casually clad in traditional Bengali attire, breached the security and fired at close range. Loman died instantly and Hodson, the superintendent of police, was grievously injured. Binoy evaded arrest and escaped to the party shelter in Calcutta. The police began a manhunt and announced prize money of ₹5,000 on Binoy's head.
और मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि आत्माराम रावजी देशपांडे की आज जयंती है. ये कवि अनिल नाम से विख्यात हैं. उनके गीतों के कई रिकॉर्ड भी बने हैं. इनकी पत्नी श्रीमती कुसुमावती देशपांडे भी बड़ी विदुषी थी. दोनों का पत्र व्यवहार कुसुमानिल नाम से छपा है. वर्ष 1977 में दशपदी के लिए रावजी देशपांडे को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. और अब बात करते हैं उनकी जिनकी आज पुण्यतिथि है. आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली कवियत्री महादेवी वर्मा की आज पुण्यतिथि है. निराला वैशिष्ट की स्वामिनी महादेवी वर्मा छायावाद की चौथी स्तंभ कही जाती हैं. उनकी गिनती 4 प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ की जाती है. उन्होंने अपने काव्य में प्रतीकात्मक संकेत भाषा का उपयोग किया है और इन्हें भारत सरकार से पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. इसके अलावा उन्हें और भी कई सम्मानित पुरस्कार मिले.
एंड टुडे इज द बर्थडे ऑफ रिचर्ड मेलविल हॉल, नोन प्रोफेशनली एज मॉबी, द अमेरिकन म्यूजिशियन, सॉन्ग राइटर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, डीजे एंड एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट. ही हैज सोल्ड 20 million रिकॉर्ड्स वर्ल्ड वाइड. ऑल म्यूजिक कंसिडर्स हिम टू बी अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डांस म्यूजिक फिगर्स ऑफ अर्ली 1990s. Helping bring dance music to the mainstream audience both in the US and the UK. After taking up guitar and piano at age 9, he played in several underground punk rock bands through the 1980s before turning to electronic dance music. And here's a song performed by Moby.
और श्रोताओं, आज बरसाना समेत वृंदावन समेत भारत में राधाष्टमी मनाई जा रही है और इसके साथ ही अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए दिव्या और अनिता आनंद को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।